ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਰਡਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ brampton.ca/wbr ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ brampton.ca/wbr।
Sodi Furniture Store Clearance. Saving.
Sale.
Sodi Furniture Stock Clearance.
Everything on floor, to go, warehouse, furniture sale.
Ji haan, Sodi Furniture lagat ki kimat se kam kimat par furniture khareediye. Furniture ki is sale ka fayda uthane ke liye, Sodi Furniture Showroom, 142 Kennedy Road South in Brampton. Huge sale, jo le gaya, so le gaya.
Jo reh gaya, so reh gaya.
Sodi Furniture. Naya Saal Naya Furniture, 905-874-7171. Sodi Furniture Store Clearance.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजस कॉस्मेटिक्स की बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी क्रिसमस वेयरहाउस सेल खास आपके लिए आ रही है। वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन पर्सेस, लगेज, डिजाइनर सन क्लासेस, नेल एंड हेयर कलर्स और भी बहुत कुछ। 80% तक की सेविंग्स रहेगी। बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम। ध्यान रहे, सेल इज फ्रॉम नवम्बर 16 टू डिसम्बर 8, फ्राइडे सैटरडे और संडे से मंडे। Lisa's Warehouse Sale, yani zyada savings for less. Visit lisascosmetics.com. इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773, 6472903773।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
چاندنی
بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
ओह, दुबई जाना है।
वो क्यों?
बेटी की शादी है, सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस का बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन is Linton ki nukkar pe. What a beautiful collection, Chopra Jewelers. 416-744-7534. Canada mein Dubai, Chopra Jewelers. Labbaik Allahumma labbaik.
Amex Travels 5-star Hajj packages. आप हज पे जाना चाहते हैं? Confusing Hajj app के हाथों परेशान मत हों. नियत आपकी बुलावा रब का इंतजाम और एहतमाम Amex Travel का. Air tickets मदीना मक्का मिना टेंट्स अरफात कैंप हरम के सामने होटल की सहूलत से लेकर डॉक्यूमेंटेशन वीजा हर चीज सिर्फ Amex Travels के साथ. लिमिटेड सीट्स कॉल Amex Travel.
Elite Hajj 2025 packages exclusive special deals for US Canadian Pakistani passport holders. Limited seats.
Book now. Call 416-599-5200. 416-599-5200.
वेलकम बैक तमाम सामीन को जो 770 एम डायल सुन रहे हैं. मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ वही शख्सियत जिसका आपको इंतजार नहीं होता, जिनके चार फॉलोअर्स हैं, पांचवें का इंतजार है और मैं भी इनको लाइक नहीं कर रहा जान करके. पांचवा मैं नहीं बनूंगा. मैंने अब तक वैसे इनको लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया. कर लो इनको शाजिया मलिक साहब को. नहीं यार छोड़ो, भाव बढ़ जाएंगे बेला वजह. चार पे ये हाल है. मैं सोचता हूं 40,000 होंगे तो क्या होगा. सही कह रहा हूँ ना? यस थैंक यू. देखो सारे एग्री कर रहे हैं मुझसे, आमिर चार ही सही है. चले जनाब रंगारंग खबरें लेकर फिर से आ गई हैं. रोज आ जाती ना, यकीन करें. वो कहते एक और भी मैं आपको बताएगा कि वो आप कह रहे थे यार ये सर्दियों में जानवर गर्मियों में जानवर सर्दियों में क्यों आ गया. भाई मेरा हमेशा से एक रूल रहा है, जितनी भी सजाएं ना वो अगर इस दुनिया में पूरी हो जाए ना, यकीन करें मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा. बाद में जाने के बाद जो है ना गेट खुलेगा अल रेयान सीधा अंदर. नहीं मजाक कर रहा हूँ, शादी के साथ मजाक चलता रहता है. तो इससे पहले कि ये अपने साउंड इफेक्ट शुरू कर दें, वैसे तो आपको हल्के हल्के सुनाई दे रहे होंगे, मैंने माइक ऑन रखा है इनका. तो रंगारंग खबरों के लिए अच्छा एक और बात भी कर लूं यार, अभी इनसे पूछता हूँ. मैं सुना इमरान खान को छोड़ दिया भाई, तो इनसे पूछता हूँ कि भाई ये तो कह रही थी नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान बाहर नहीं आएगा, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जीतेगा. आइए शाजिया मलिक को सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं, फिर गर्मा गर्म और रंग रंग खबरों पर उनसे तबसरा भी करते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
WS तुम्हारा झूठ इधर ही खुल गया और सारे लोग मेरा साथ दे रहे हैं. यस यस आप लोग ठीक कर रहे हैं. मैंने कहा था
आप तो कहते कभी भी नहीं निकले.
मैंने कहा था अगर ट्रंप जीतेगा, अगर
ट्रंप जीतने भी राजी नहीं थी
उसमें मैं नहीं थी. मैं मुझे लग रहा था कि बिल्कुल नहीं ट्रंप जीतेगा, बिल्कुल जो मैंने बात की है सर मैं उस पर बिल्कुल मैं कहा. मैंने कहा था कमला हैरिस जीतेगी. मैं आज हाँ ट्रंप जीत गया, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ट्रंप जीता तो खान साहब के आसानियां हैं और वो बयराज भी सकते हैं. अगर कमला हैरिस
अब आप एक
तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन
आप इस पे जो है डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट पर साइन करिए. आप साइन
अरे पायल मैंने तो बड़े खुलेआम कहा था कि कमला हैरिस जीतेगी. मैंने तो
साइन करेंगे
पता ही हमने जून से कह दिया था कमला हैरिस.
अगले साल भी इनकी एक और प्रेडिक्शन जो है वो खराब हो जाएगी.
इसका ये प्रेडिक्शन खराब नहीं होगी.
एक और जून जुलाई का आगे
जून जो है उसमें अब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, 100% नहीं लग रहा कि अब जो है लिबरल पार्टी जीतेगी. मुझे लग रहा है कंजर्वेटिव ही जीतेंगे. लेकिन जो है कमला हैरिस का मैंने कहा था कि वो जीतेगी हर हाल में.
इमरान खान का क्या कहती हैं आप?
इमरान खान के लिए आसानी है. मैंने आपको दो दिन पहले डेविड लेमी का लेटर सुनाया ना.
डेविड लेमी यूके वाले थे.
हाँ आपको सुनाया ना मैंने लेटर. वो मैंने इसीलिए सुनाया था कि अब प्रेशर बढ़ रहा है. और मेरा एक जुमला था अगर आपको याद हो कि अब मिलिटरी जो हमारे पिंडी बॉयज हैं जैसे फियाज भाई कहते हैं अगर आपको याद हो मेरा ये पूरा हाँ तो कहते हैं कि पिंडी बॉयज की फुर्तियां जो है अब बढ़ गई हैं. और मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह हमारी भी इज्जत रह जाए. इमरान का इमरान को कह रहे हैं कि 9 मई का जिम्मा ले लो. सॉरी बोल दो, मैंने उस दिन भी बोला है आपको. और हम तुम्हें भी छोड़ देते हैं, तुम्हारे साथियों को भी छोड़ देते हैं, सब तुम्हारे लिए आसानियां कर देते हैं. इमरान खान कह रहा है जब हमने किया नहीं है तो हम क्यों सॉरी मांगे, ना मैं झुकूंगा ना मैं आपकी बात मानूंगा. अलबत्ता ग्लोबल प्रेशर बेतहाशा इन पे पर जैसे ही ट्रंप वैसे भी आएगा तो फिर आप देखना ये पिंडी बॉयज जो है ना, बिल्कुल इनकी फुर्तियां और तेजियां ज्यादा हो जाएंगी।
आज जो हवा चली है मुझे लग रहा है कि इससे तो काफी मैसेज दिया जा रहा है।
बिल्कुल,
लेकिन मैं सुन रहा था कि कहीं और थाने में भी जो है मुकदमा दर्ज कर दिया और
बहुत सारे FIRs हैं
अभी,
लेकिन
काट दिए कुछ।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एटलीस्ट इस्लामाबाद में अब उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, अब कोई मुकदमा।
कोशाखाना भी फारिग हो गया, कोशाखाना
हो गया, सब टू हाँ वो हो गया। तो यानी कि अगर अब आपने बन्नू में उसके FIR काट दिए, मुल्तान में काट दिए, सिंध में काट दिए हैं, या बलोचिस्तान में उसकी FIR काट दी हैं, तो अब वो फिर उधर चलेंगे मुकदमे।
उनका क्या, अगर इनके ऊपर कोई केसेस नहीं है चल रहे हैं तो इनको जो है वो बरी कर दिया जाए।
हाँ, तो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब इनका कोई केस नहीं है, राइट। तो ऐसे है, तो ये है। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आज मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ फिर से, कि एक तो डेविड लैमी जो हैं उन्होंने बड़ा जोर इनके ऊपर दिया कि ये जो कुछ है हम बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं ट्रंप साहब के आने का। यू नो, तो वो ट्रंप साहब जैसे ही आएंगे, जो वहां से जो है अंकल सैम का हुक्म आएगा, अंकल सैम के हुक्म जो कनाडा के लिए, यूके के लिए, बाकी दुनिया के जो है, वो बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे।
सही कह रही हैं। और पीटीआई की जो लॉबिंग कंपनीज हैं जो भी काम कर रही हैं यूएस में, वो भी बहुत प्रेशराइज कर रही हैं, इस वक्त लॉबिंग जो कर रही हैं किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप या आसपास के लोगों से एटलीस्ट ट्वीट ही हो जाए।
अच्छा, यू विल बी सरप्राइज नाउ अगेन, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे आसिम मुनीर साहब जो है हमारी जो पिंडी बॉयज हैं, उन्होंने भी वही लॉबिंग फर्म अब जो है हायर कर ली है अमरीका में जो इमरान खान की थी।
क्या बात करती?
जी 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 जी, उन्होंने भी वो हायर कर ली है ताकि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का जो है वो। अच्छा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि किसी जमाने में पेंटागॉन और MI6 जो है इंग्लैंड के, वो बहुत क्लोजली काम करते थे हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ, हमारे डिक्टेटर्स के साथ। अब वो भी पीछे हट गए हैं, वो कह रहे हैं कि तुम लोग सही काम नहीं कर रहे हो, तो इसलिए अब उनका भी हाथ इनसे उठता जा रहा है। तो अब इनके साथ दुनिया में कोई खड़ा नहीं रह गया।
बड़ा मुश्किल,
हाँ मुश्किल इनके लिए हो गई हैं, और ये इनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि देखे ना, एक पॉलिटिकल एक आपका डिस्कोर्स होता है, एक आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारी डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क कर दें और पॉलिटिकल पार्टियों को जेल में डाल दें, हाँ अंदर कर दें। बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है, जितने शेख हसीना के साथी हैं, जितने भी हैं इंक्लूडिंग शेख हसीना, सब सबको पकड़ के उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने जुल्म किया, एनआरकी मुल्क में चलाई, इन्होंने जो है एक फैशिज्म चलाई, सबको जेलों में डाला जा रहा है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज जस्टिन ट्रूडो को पीए पॉलीएव नहीं पसंद, पीए पैली पॉलीएव को ट्रूडो नहीं पसंद, तो जी जेलों में डालो सारों को। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। अब जैसे अब ट्रंप साहब आएंगे, नहीं किसी भी मुल्क में नहीं होता, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना इटली, ना कहीं पे भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारे। और इवन आप इंडिया तक में भी देख लें कितना ज्यादा क्लैश है, कितना ज्यादा बीजेपी का और कांग्रेस
का क्लैश है। पॉलिटिक्स एक ही है तकरीबन।
हाँ जी हाँ जी, तो वो डालते भी हैं दो चार दिन के लिए, हफ्ते 12 दिन के लिए। अच्छा जी, अरविंद केजरीवाल को डालो, इसके साथियों को डालो, जो है राहुल गांधी को तंग करो, इसके पार्टी के बंदों को पकड़ो, कितने दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने।
एंड दैट अदालतें आजाद चल रही
हैं, हालांकि अदालत में भी जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे लायक, सबसे काबिल जो उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, जो जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे, जो कहते थे जी हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, जस्टिस के बेटे हैं, खुद बेतहाशा उनका इंडिपेंडेंट माइंड है, वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट के कहने के ऊपर कुछ उनके मर्जी के फैसले करते थे। लेकिन ये नहीं है कि अगर 1000 फैसला है तो 1000 के 1000 का ही बीजेपी के हक में है, अगर 1000 में से अगर 600 बीजेपी के हक में है तो 400 उसके खिलाफ भी है भाई। अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी स्टैंड करते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर बैकलैश बहुत आ गया था जो उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट दिया था, तो वो उसके ऊपर बहुत उनका आया था, ठीक है, वो बीजेपी गवर्नमेंट को खुश करना चाहते थे, राइट। लेकिन और उनके बहुत से फैसले हैं जो, तो दुनिया में किसी जगह पे ये नहीं होता कि आप जस्ट बिकॉज आपको दूसरा बंदा नहीं पसंद तो उसकी पूरी पार्टी को आपने दीवार से लगाया हुआ है, उसके लीडरों को जेलों में डाला हुआ है, और आप एक एनआरकी मुल्क में चला रहे हैं, और फिर आप उसके ऊपर जो है शर्मिंदा भी नहीं हो रहे हैं। और
जब गलत की नहीं शर्मिंदा क्यों,
बस यही है, यही है, हाँ।
यही है ना बात, तो ये है कि शादी शर्मिंदा जब होता है इंसान, जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जैसे अभी आपने डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट एक्सेप्ट किया ना, अब आप एक्सेप्ट ही ना करती।
नहीं नहीं, हम तो करते हैं, हम तो बिल्कुल करते हैं, हमने तो कहा कि हमने
तो वहां एक्सेप्ट नहीं होता ना, गलत किया ही नहीं। तो कैसे, किस बात की शर्मिंदा,
तो ये जो है ना इनके लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं। और जनवरी के बाद, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर से कह रही हूँ, जनवरी के बाद ये जो फुर्तियां हैं ना, ये सारी इनकी धरी की धरी रह जाएंगी, इनके लिए मुश्किलें आएंगी, क्योंकि दुनिया इतनी भी, आपको अंधे लगते हैं ना, दुनिया इतनी भी अंधी नहीं होती, ठीक है, दुनिया सारा कुछ देखती है। अच्छा जनाब, एक तो हम आपको खुशखबरी दे दें कि हम जो आपको बहुत दिनों से कह रहे थे कि ये जो क्यूब लोकल 831 का जो लड़ाई झगड़ा ब्रैम्पटन सिटी के साथ चल रहा था, हम आपको कह रहे थे कि आप अपने स्केड्यूल्स जो हैं जाके देख लें लेट्स कनेक्ट के ऊपर, वहां पे सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की वेबसाइट पे, वो आज मसले साले हल हो गए हैं, लेकिन फिर हम आपको कह रहे हैं लेट्स कनेक्ट पे आप जाएं सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की जो brampton.ca उस साइट पे, और फिर से देख लें कि अब फिर से क्या स्केड्यूल्स हैं बसों के और जो उनकी ट्रांजिट है उसके, तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है जनाब, इसके अलावा जनाब हम आपको बता दें कि राजा बादशाह जी जो है ना वो सिर्फ यार हैं आमिर के, उन्होंने 150,000 इसके पैसे बचाए हैं और अब ये यारों दोस्तों के साथ यूरोप के टूर पे जा रहा है। तो राजा बादशाह का अगर आप भी चाहते हैं कि जी आपके भी $1775 बचाएं वो घर और ऑटो इंश्योरेंस पे, तो आप उनको कॉल कर लें, उनका नंबर है 6472903773, मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी। अगर आप भी आमिर की तरह जो है वो जानवर खोर किस्म के बंदे हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, तो फिर पहुंच जाएं, क्योंकि चीजें बहुत इन्होंने सस्ती कर दी हैं, पैहे बहुत कम कर दिए हैं इसके ऊपर, लैम पे, बीफ पे, चिकन पे, जो है वो उस पे मटन पे, तो वहां पे जाएं, चाय, जलेबी और समोसा भी कभी एंजॉय का मजा लें और अपनी शॉपिंग भी करें। वसीम भाई को कांटेक्ट करें @416-854-8962। और जनाब मुल्तानी सोन हलवा बिल्कुल ऑथेंटिक फ्रेश यहां पे ही बनता है, मुल्तान से नहीं आता ना, मुल्तानी है लेकिन मुल्तानी यहीं पे बनता है, तो आप इनका साइट विजिट करें multanihalwadelights.com, या कि आप फिर इनको कॉल भी कर सकते हैं @416-270-4439। और जनाब आ गई हैं सर्दियां, सर्दियों में आपको क्या चाहिए, गर्म कपड़े, आमिर की तरह नहीं पतली सी टी शर्ट पाए तो फिर उसके बाद कुकड़ बंदे रहे बैठ गए हैं जी, सर्दी से ऐसे कुकड़ बने बैठे हैं, नहीं ऐसा नहीं आपने करना, आपने अच्छे मोटे कपड़े लेने और वो कपड़े जो साला साल चलेंगे। तो आपने किधर जाना है, स्पेयर एंड मके पे, स्पेयर एंड मके पे जबरदस्त किस्म के जो है वो अब लेटेस्ट जो कलेक्शंस आई हैं जनाब, उसका तो मुकाबला आप बिल्कुल हैरी रोजन या इवन ह्यूगो बॉस और बर्बरी से भी कर सकते हैं, तो आप उनको विजिट कर लें, उन्होंने अपना नया आउटलेट खोला और माशाल्लाह से जिस दिन से 770 के साथ एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ना, बहुत नए सारे आउटलेट खोल रहे हैं, देखिए कितना उनका बिजनेस बढ़ गया, तो आपको सीख लेनी चाहिए स्पीयर एंड मके से। माशाल्लाह इनके और भी बेशुमार स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन अभी नया स्टोर एक खुला है 775 ब्रिटानिया रोड वेस्ट यूनिट 7B पे मिसिसागा में, इनका नंबर है 9056703388 9056703388। जबरदस्त हाई एंड क्वालिटी के हैं। मेरे भाई ने एक गलती से इनसे कोट लेके चला गया था, वो कहता है ना ये कोट फट रहा है, ना खराब हो रहा है, ना इसका रंग उड़ रहा है, मैं अब क्या करूं कैंची से लेके इसको काटूं, तो भाईजान ऐसी इनकी क्वालिटी है। ठीक है जनाब, आप उधर जाएं और आप जो है ये महंगी चीज थोड़ी सी शायद आपको नजर आएगी लेकिन ये साल हा साल चलेगी। ठीक है, अच्छा जनाब सबसे तो आज की जो बड़ी खबर है, और ये बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि ये खबर शो करती है कि बहुत ज्यादा वॉर के जो इधर यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई है वो ज्यादा भड़क सकती है। उसकी वजह यह है कि आज कनेडियन एम्बेसी ने अनाउंस किया है कि हम कीव के अंदर अपना जो एम्बेसी है उसको टेम्परेरली शट डाउन कर रहे हैं और उसके अंदर जो है इन पर्सन सर्विसेज नहीं होंगी, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमको यूएस ऑफिशियल्स ने वार्न किया था कि यहां पे जो है एक एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो कैनेडियन जो ग्लोबल अफेयर्स कनाडा है उसने कहा जी कि आप शेल्टर लें जैसे ही आप अलर्ट सुने कि एयर अटैक होने वाला है, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यूएस की ये जो एडवाइजरी आई है उसके ऊपर आपको गौर करने की जरूरत है। लेकिन जो यूके की आर्मी स्पाई एजेंसी है उन्होंने कहा जी कि रशिया ये झूठ फैला रहा है और फेक न्यूज फैला रहा है कि कोई हमले हो सकते हैं और कोई एयर रेड सायरन्स आपको सुनाई देंगे तो आप सेफर जगह पे जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हां अगर सुनाई दें तो आप जरूर शेल्टर लें, लेकिन पैनिक करने की इसमें जरूरत नहीं है। ये जो है रशिया ये फेक न्यूज फैला रहा है कि हम मैसिव मिसल अटैक करेंगे और बॉम्ब अटैक्स करेंगे यूक्रेन की सिटीज के ऊपर, ये गलत है। इसके साथ साथ लेकिन सिर्फ कनाडा ही नहीं, कनाडा के साथ यूएस, स्पेन, इटली और ग्रीस ने भी आज अपनी एम्बेसीज जो हैं कीव में शट डाउन कर दी हैं। तो ये जनाब खतरे की घंटी है, कैंटी है बल्कि। ठीक है, आज जनाब ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने अपने मिनिस्टर रैंडी बॉयसनॉल्ट जो हैं उनको कहा है कि भई आप कैबिनेट छोड़ दें, तो इन्होंने आज रिजाइन किया। कनाडा की बड़ी खबर आज यही है कि मिनिस्टर रैंडी बॉयसनॉल्ट ने आज रिजाइन किया है, और पीएम ऑफिस से जो एक स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा जी कि दोनों ने एग्री किया है कि रैंडी साहब जो है वो इमीडिएटली इफेक्टिव इमीडिएटली वो ये रिजाइन करेंगे और फोकस करेंगे ये जो एलिगेशन इनके खिलाफ फ्रॉड के लगाए गए हैं. वेटरन अफेयर्स मिनिस्टर एंड एसोसिएट डिफेंस मिनिस्टर जिनेट पेटिटी पास टेलर जो है वो अब टेम्पररली रिस्यूम करेंगी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्क फोर्स डेवलपमेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस. जिस वक्त आज पार्लियामेंट हिल में लिबरल कॉकस के लोग जा रहे थे तो एमपीज जो है उनसे बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश की मीडिया ने कि भई आप कमेंट करें कि ये फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं कि नहीं है. उन सबने कहा जी के और ये क्या रिजाइन करेंगे. उन्होंने कहा जी पीएम इसके ऊपर जवाब देंगे. लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के जो एमपी हैं माइकल बैरे उन्होंने आज बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फ्रॉड के केसेस नहीं है जो कोर्ट के सामने हैं, ये जो है क्रिमिनल एक इन्वेस्टिगेशन है वो भी बिठाई है एडमिंटन पुलिस ने इनके सारे कामों की एक्टिविटीज पे. तो अब लिबरल गवर्नमेंट जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो इनको कैबिनेट और कॉकस में रखना चाहते हैं या नहीं. तो जाहिर है कि उससे पहले ही ट्रूडो साहब कह चुके थे कि हम जो है रैंडी बॉयस्टन को हमने कहा है तो वो अब कैबिनेट से रिजाइन कर रहे हैं. आज बहुत सारे होम मेड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो एक आरवी के अंदर मिले जिसमें कि बताया जा रहा था कि एक आदमी है उसने अपने आप को बैरिकेड किया हुआ 14 घंटे से और इसकी वजह से फिर पुलिस ने इवैक्यूएट किया ये नॉर्थ एंड ऑफ बैरी का जितना इलाका था. बिजनेसेस थे, लोग थे, घरों से उनको कहा जी आप चले जाओ, बिजनेसेस से भी निकल जाओ. पुलिस जो थी उसको बताया गया था कि एक वेपन्स कोई एक कॉल आई थी कि वो है उस एरिया में बेफील्ड स्ट्रीट प्लाजा के पार्किंग लॉट में नियर हैदर स्ट्रीट. और जिस वक्त पुलिस उससे पहुंची उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को जाहिर करो तो उसने इनके ऊपर गोली चलाई. कोई इसमें जख्मी तो नहीं हुआ लेकिन फिर बहुत सारी पुलिस की टेक्टिकल व्हीकल्स जो थे उन्होंने इस कैंपर को जाकर रैम किया और ऑफिसर्स ने उसको सराउंड किया और फिर जो है ये इसको पकड़ा. तो अब जो है लोगों का कहना है कि पुलिस का इतना लेट रिस्पांस क्यों हुआ क्योंकि ये व्हीकल जो है इस पार्किंग लॉट में तकरीबन 1 महीने से मौजूद था. तो अब इसका जवाब तो जनाब पुलिस ही दे सकती है. टोरंटो के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि 14 टोरंटो के जो डे केयर्स हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो नेशनल $10 अ डे प्रोग्राम है इसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे. इसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं उनकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब उनको ओवर $2,000 मंथली फीस जो है इनको देनी पड़ेंगी और ये जो है बेतहाशा एक्सपेंसिव इनके लिए हो जाएगा. बहुत सारी जो मदर्स हैं खासतौर पर वो कहती हैं जी कि हम फिर जो है वो बहुत सारे दूसरे डे केयर्स ढूंढ रहे हैं जहां लेस फीस है लेकिन वहां पर स्पेसेस नहीं है बच्चों के लिए. तो हम अब ना तो अपने काम कर सकेंगी ना हम जॉब्स अपने कर सकेंगी. बच्चों को हम कहां पे छोड़ेंगे और कैसे जाएंगे. ये इतने एक्सपेंसिव डे केयर तो हम चूंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो हम होपलेस बिल्कुल फील कर रहे हैं. ऑन्टेरियो जो है उसने जिस वक्त ये नेशनल प्रोग्राम जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि सब्सिडाइज की जाएंगी फीस इनके लिए तो उस वक्त वो कहते थे कि जी बहुत सारे हाफ ऑफ द टोटल डे केयर सेंटर्स जो है उन्होंने इसको अप्लाई किया था और बाय 2026 जो है कम्प्लीटली सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे अपने डे केयर सेंटर्स में. लेकिन अभी तक सबने किया भी नहीं था और अब तो बहुत सारे अब जैसे 14 मैंने आपको बताया डे केयर उन्होंने तो कहा हम करेंगे नहीं. तो अब इनकी फी जो है तकरीबन $2,565 पर मंथ जो है उसके लिए उस तक बढ़ जाएगी फॉर इन्फेंट स्पेसेस. और वो कहते हैं जी कि हम बिल्कुल प्री पेंडेमिक फीस ही लेना चाहते हैं और लोगों ने फिर अब पेरेंट्स ने कहा अथॉरिटीज को कि भाई आप इस पे एक्ट करें. यूएस ने तो जनाब आज कमाल ही कर दिया. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आज एक रेजोल्यूशन आई थी सीज फायर की गाजा में और यूएस ने उसको वीटो किया है और उन्होंने एक्यूज किया काउंसिल मेंबर्स को कि वो बड़ा सिनिकली रिजेक्ट कर रहे हैं अटेम्प्ट्स एट रीचिंग कॉम्प्रोमाइज. 15 मेंबर काउंसिल का ये जो वोट था ये लाया गया था 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के और उन्होंने कहा जी कि इमीडिएट अनकंडीशनल एंड परमानेंट सीज फायर यहां पे किया जाए और एक और हम फिर रेजोल्यूशन लाएंगे जिसमें हॉस्टेजेस की बात की जाएगी. यूएस ने इसको बिल्कुल वीटो किया. हमास ने एक्यूज किया जाहिर है कि यूएस को कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसराइल के जीनोसाइड में क्योंकि जाहिर है वो कॉन्स्टेंटली दबादब उनको हेल्प दे रहे हैं असला भी दे रहे हैं. इसी तरह पैलेस्टीनियन एनवॉय टू यूएन मजीद बामिया जो है उन्होंने भी कहा जी कि कोई इसका जस्टिफिकेशन नहीं था कि इसको वीटो किया जाए. तो बहुत सारे और भी लोगों ने माइंड इसका किया. आपको हैरत होगी सुन के कि वाहिद एक जो यूएस था उसने इसको वीटो किया. बाकी के जो मेंबर्स थे 15 मेंबर जो काउंसिल थी उसमें से 14 लोगों ने इसके फेवर में बात की थी. मीनवाइल यूएस सेनेट जो है वो भी अब इस वीक में एक बिल ला सकती है कि ये जो यूएस 20 बिलियन यूएस डॉलर के आर्म्स डील बनाए हुए हैं इसराइल से, इसको खत्म किया जाए। इसमें आगे आगे जो है वो जो सेनेटर बर्नी सैंडर्स हैं उन्होंने कहा था जी कि ये मैं स्टेप्स मैंने जो सितंबर में इंट्रोड्यूस कराए थे अब मैं फिर से जो सामने लेकर आऊंगा और इसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए कि हमको बिल्कुल इसराइल को आर्म्स देने बंद करने चाहिए। इसके बाद जो है जी इसराइल के अंदर नई चेंजेस आई। नतन्याहू साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हर वो बंदा जो कि हमको इसराइली हॉस्टेजेस जो हमास के कैद में है लाकर देगा उसको $5 मिलियन हम देंगे। आज वो ब्रीफ विजिट कर रहे थे गाजा की उस जगह का जहां पे के जो इजरायली मिलिट्री है वो नेट जारीम कॉरिडोर बनाए हुए है। ये एक रोड एक्सेस है बफर जोन के अंदर जहां से के ये लोग नॉर्दर्न और सदर्न जो गाजा है उसको ज्वाइन करते हैं। तो नतन्याहू साहब ने कहा कि जो भी हमें इनका पता देगा और हमें लाकर देगा हम उसको और उसकी फैमिली को बिल्कुल सेफ पैसेज देंगे कि वो यहां से निकल जाए, लेकिन वो जो हमें नहीं इसके बारे में बताएंगे तो फिर चॉइस उनकी है। इसराइल का ख्याल है कि तकरीबन कोई 101 कैप्टिव्स हैं हमास की जो कैद में है गाजा में, लेकिन उनका यह भी ख्याल है कि 1/3 हो सकता है कि उसमें से हमास ने मार दिए हुए। बहरहाल जनाब $5 मिलियन बड़ी रकम है देखो उनकी अंदर। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग पेट्रोल जो लेबनान में है जिसके के अंदर फ्रेंच ट्रुप्स भी हैं उनके ऊपर आज अटैक्स किए गए लेबनान के अंदर। फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज ये बताया, लेकिन थैंकफुली उन्होंने कहा जी कि कोई भी इसके अंदर हर्ट नहीं हुआ है, सब बच गए हैं, खैरियत से हैं। फ्रांस ने यह बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिफिल जो है ये अपने काम आजादी से कर सके और जो यूनाइटेड नेशंस का जो मैंडेट है उसको इम्प्लीमेंट इधर करवा सके। अभी तक किसी ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली है कि किसने इनके ऊपर अटैक किया था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि यूएन पर्सनल उनकी प्रॉपर्टी और प्रेमिसेस का सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमको इंश्योर भी करना चाहिए कि वो लोग सेफ रहे। इसके साथ साथ इसराइल जो है वो अब ना सिर्फ लेबनान में बल्कि जो जनीन है वहां पे गाजा में जो पैलेस्टाइन में उसके ऊपर भी अटैक्स कॉन्स्टेंटली करता जा रहा है। बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को उन्होंने पकड़ा, डिटेन किया, उनको मारा पीटा और उनको अब मारा भी है बहुत सारों को। रेड क्रेसेंट जो है पैलेस्टाइन की उसने कहा है कि इजरायली फोर्सेस तो अब इन सब लोगों को ये जो डिटेन पैलेस्टीनियंस हैं इनको एज अ ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे हैं टू रेड ऑन जनीन। तो अब ये जीनोसाइड नहीं है, ये जुल्म नहीं है, तो और क्या है। तो जनाब ये जुल्म कब तक रहेगा, ये काली रात कब तक रहेगी बेचारे पैलेस्टीनियंस पे, ये तो अब रब ही जानता है, रब ही इसका जवाब दे सकता है। ईरान ने जनाब आज बहुत ज्यादा कंडेम किया है यूरोपियन यूनियन और यूके को क्योंकि उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं ऑन इट्स स्टेट रन शिपिंग को और ये है ईरान शिपिंग लाइन इसका नाम है और दूसरे एंटिटीज के ऊपर भी। ईरान ने कहा है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है जिसमें कि वो ज्यादा बढ़ावा इस झूठी खबर को दे रहे हैं कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स रशिया को दिए हैं टू यूज अगेंस्ट यूक्रेन वॉर। ये बिल्कुल इसके अंदर कोई लेजिटिमेसी नहीं है, लीगल बेसिस नहीं है और कोई लॉजिकल फाउंडेशन भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगेई जो है वो इन सारी चीजों का डिटेल्स दे रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो हमने बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमने ट्रांसफर जो किए हैं इरानियन मेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उनको और उसके कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजीज ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये जो हमारे ऊपर हमारे एसेट्स पे फ्रीज लगाया गया है इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। उन्होंने इसके अलावा बगई साहब ने कहा कि खुद जेलेंस्की ने यह एडमिट किया है कि कोई भी इरेनियन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया को एक्सपोर्ट नहीं किया गया है। तो फिर इन सैंक्शंस का क्या मतलब है? तो बस जी सैंक्शंस का यही मतलब है कि हमने आपको ऑल जरीलो ख्वार दुनिया में करना है बस, और की ये पाइजन समझ नहीं आ रही। तो आज जनाब अगर आप लंदन का हाल देख रहे थे तो आपने देखा होगा कि लंदन सारा जो है वो ब्रिटिश फार्मर्स जो हैं उन से भरा हुआ था क्योंकि वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो स्क्रेप करे अपना इनहेरिटेंस टैक्स जिसमें कि ये कहा गया है कि जो लैंड ओनरशिप है जो अगर पास ऑन की जाएगी जनरेशंस पे तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये फैमिली रन फार्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा। आज उन्होंने बड़े बड़े प्लैक कार्ड्स उठाए हुए थे जिसपे लिखा हुआ था नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर स्टार्मर फार्मर हार्मर और ये सारे लोग जमा हुए हुए थे पार्लियामेंट स्क्वायर के अंदर। इन्होंने जो है कहा कि ये जो आपने टैक्स लगाया जिसको वो ट्रैक्टर टैक्स कह रहे हैं न्यू लेबर गवर्नमेंट ने जो अपने बजट में लगाया था उसको उन्होंने बड़ा स्लैम किया, और जब उन्होंने अनाउंस ही किया था तब भी बड़ा बैकलैश आया था फार्मिंग कम्युनिटीज की वजह से। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट बिल्कुल रूरल कम्युनिटीज को अंडरस्टैंड नहीं करती है। आज तक कभी ये जो फार्म्स जनरेशंस को पास ओवर किए गए थे उसके ऊपर कभी भी कोई टैक्स नहीं था, लेकिन लेबर गवर्नमेंट ने कहा है कि 2026 से 20% टैक्स दिया जाएगा वैल्यू ऑफ फार्म पे, जिसकी के वैल्यू अगर 1.27 मिलियन US डॉलर से ऊपर होएगी। तो उस पे आज जनाब बड़ा तूफान मचा हुआ है। लैंडिंग तो वही टूरिस्ट वो है स्टेशन है, तो ये क्या हो रहा है, ये सारे फार्मर इधर आ गए हैं, तो अभी कैसे चलेगा। अच्छा जनाब, हुण पाकिस्तान दे विच सिर्फ शार्क जड़ी है वो साड़ियां केबलां नहीं खा रही, होर भी दुनिया दे विच बड़ा कुछ हो रहा है जी। आज जर्मनी जो है उसने कहा जी कि ये खास तौर पे सेबोटाज जो डैमेज किया गया है दो टेलीकॉम केबल्स जो थे जो बाल्टिक सी से चल रहे थे, और इसके ऊपर जब बयान आया जर्मनी का तो ईयू ने भी बहुत ज्यादा कंडेम किया, और ईयू का तो एक ही काम आजकल रह गया आपको पता ही है, फौरन उन्होंने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने कहा ये रशिया की सारी शैतानी है, ये रशिया ने जो है ये बाल्टिक केबल्स जो है टेलीकॉम की ये बाल्टिक सी में ये इनको जो है डिस्ट्रॉय किया है। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस जो है उन्होंने आज रिपोर्टर्स के साथ ब्रसल्स में बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी के ये जो केबल्स हैं फिनलैंड जर्मनी के बीच में और स्वीडन लिथुएनिया के बीच में ये बिल्कुल कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये खास तौर पे सेबोटाज किया गया है, और हमें पता है ये कहां से आ रहा है, ये एक हाइब्रिड एक्शन है। और पहले ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि ये जो अटैक किया गया है इंटरनेट लिंक पे बिटवीन लिथुएनिया एंड आइलैंड ऑफ गॉटलैंड इन स्वीडन एंड द केबल्स बिटवीन हेलसिंकी एंड जर्मन पोर्ट ऑफ रॉस्टॉक, तो इनको जो है शायद कोई वहां पे ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी इसको खास तौर पे सेबोटाज किया है बैड इंटेंशन से, और स्वीडन ने इसके ऊपर जो है अब एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है। तो वो कह रहे हैं जी कि ये हमारे सिस्टम जो है वो सही नहीं है, ऐसे है। लेकिन मुझे हैरत है शार्क नहीं आई आज तक, आपकी नहीं केबलें काटती शार्क आके, हमारी तो पाकिस्तान की काट देती है जी, ऐसे है। अच्छा जी, रशिया जो है वो जाहिर है कि वो नाराज है क्योंकि यूक्रेन जो है अब उसने यूज करना शुरू कर दिया है यूएस मेड लॉन्ग रेंज ATACMS मिसल्स, और इस पर रशिया ने कहा है कि दिस मार्क्स अ न्यू फेज ऑफ वेस्टर्न वॉर अगेंस्ट मॉस्को, और उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। यूक्रेन जो था उसको यूएस मेड मिसल्स की गो अहेड दी थी बाइडन साहब ने कि आप टारगेट कर सकते हैं मिलिट्री फैसिलिटी को रशिया के अंदर, और ये जब ग्रीन लाइट मिला था उनको कीव को तो उनको कहा था कि ये आप लॉन्ग रेंज वेपन्स जो हैं हमारी तरफ से आपको इजाजत है आप यूज करें। ये जो है ये आर्मी टैक्टिकल मिसल सिस्टम है जिसको कि ATACMS कहते हैं, और ये उस वक्त इजाजत दी बाइडन साहब ने जबकि उससे एक दिन पहले पुतिन साहब ने कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन पे नहीं करना चाहते, यानी कि उसकी लोअर जो है वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन आज जब उन्होंने किया तो अब एवरीथिंग हैज टू बी ऑन टेबल राइट। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने जो स्ट्रक किया है हमारा ब्रायनसेक रीजन को विथ 6 मिसल्स, तो उसमें से 5 हमने इंटरसेप्ट किए थे और एक को हमने डैमेज किया था, लेकिन ये डेफिनेटली ये सिग्नल भेज रहा है कि वेस्ट हमारे साथ वॉर को एस्केलेट करना चाहती है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव ने आज G20 प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजील ने भी कहा कि हम अपनी मर्जी से अपने जगह के ऊपर जो है इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने एक्यूज किया यूएस को ऑफ हेल्पिंग कीव ऑपरेट मिसल्स, ठीक है जी। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सोडी फर्नीचर। इन्होंने कहा जी कि हमारे पास स्पेशल स्टॉक आ गया है और बड़ी जबरदस्त रेनोवेशंस हैं, और ये हमने डाउन साइज करने हैं अपना 60,000 स्क्वायर फीट वेयर हाउस को 230,000 स्क्वायर फीट, इसलिए हम ये फर्नीचर निकालना चाह रहे हैं फटोफट, तो बहुत ही लो प्राइस पे हम इसको दे रहे हैं। तो अगर आप इसमें एंजॉय का मजा लेना चाहते हैं तो आप इनका सोडी फर्नीचर का जो शोरूम है उसको विजिट करें एट 142 कैनेडी रोड, और फर्नीचर के लिए खरीदारी करें। इनका नंबर है 9058747171। और जनाब जो हज पैकेजेस 2025 आ गए हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास हर तरह के जो है पैकेजेस हैं, अगर क्वाड है ट्रिपल है या डबल है तो आप इनको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कंटेक्ट बल्कि कर सकते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारे काफी रीजनेबल पैकेजेस है इसके अंदर, हज का वीजा और कुर्बानी है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है। इसमें वीआईपी टेंट्स आपको मिना और अरफात में दिए जाएंगे। तो वो कहते हैं हमको कॉल कर लें जनाब, और इनका नंबर है 416-599-5200 एंड ओपन माइक कफे। देसी खाने का एंजॉय का मजा लेना चाहते हैं तो नासिर शाह साहब कहते हैं जी ओपन माइक कफे पे आए, और इनका नंबर है 416-526-6800। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताला तारण साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान के रिलीज का कोई भी चांस नहीं है, और उन्होंने कहा जी कि जो है ये सफिशिएंट एविडेंस है इनके खिलाफ कि इन्होंने गिफ्ट जो है स्टेट के कैसे बेचे, और जो इनकी बेल जो है वो कैंसिल की जाएगी, और इनके साथ जो है वो इमरान खान साहब जो है अगर उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया जो कि वो करते हैं हमेशा, और उनकी वाइफ ने भी नहीं किया जिनकी के हिस्ट्री है कि उनका इस तरह का कंडक्ट है कि वो लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो ये फिर सारा इनका जो है नॉन कोऑपरेशन की वजह से इनके बेल को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा अगर इनको बेल मिल भी जाती है इस्लामाबाद से तो 8 FIRs जो हैं रिलेटेड टू May 9 में हैं वो अभी भी इनके ऊपर है, तो इनका रिलीज पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और भी बेतहाशा केसेस हैं जिसमें कि इनको बेल लेना पड़ेगा। भाईजन थोड़ा फ्यूचर मैनू अच्छा नहीं लग रहा, बंदे नू इतना भी जड़ा है ना थले लग के ही रहना चाहिए। हम असि आमिर नू समझाने ना बीवी दे थले लग के ना रहे, आमिर सुनता नहीं और पिटता है। भाईजान तुसी सुन लो, थले ना लगो इतना भी है, जरा थोड़ा जहा हाथ वाला रखो। अच्छा जनाब, इनके जैसे ही ये बयान आया उसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है शाम को इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात की, सुबह जैसे ही दिन चढ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी बेल दे दी इमरान खान साहब को न्यू तोशाखाना केस में, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं उन्होंने इनको ये कहा कि हम 2 श्योरिटी बॉन्ड्स देने हैं आपने इमरान खान साहब वर्थ ₹1 million each इन 2 separate cases और सेपरेट गारंटर्स होंगे जो आपके ये देंगे। तो अब उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद की ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी ऐसा केस नहीं रह गया इमरान खान जो आपके खिलाफ पेंडिंग होएगा, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि खान साहब एडे भी पागल ना तुसी हो जाना, ये बेल जो का जो मिसयूज आपने नहीं करना है, और जब भी आपको ट्रायल कोर्ट बुलाएगा आप और आपके बेगम को आना पड़ेगा, वरना फिर जो है ये जो अनलेस एंड अंटिल आपको एग्जेम्पशन दिया जाता है, वरना फिर आपका ये जो बेल है ये रिवोक भी किया जा सकता है, तो आप ट्रायल कोर्ट के साथ कोऑपरेट करते रहे। तो पैजन उसने जाना किधर है, मासूम ने जेल में तो आपने उसको डाला हुआ है। अच्छा जनाब, ये पॉसिबिलिटी के ऊपर बात की जा रही है कि शायद नवंबर 24 का प्रोटेस्ट खत्म किया जाएगा, और अगर आप हमारी बात मान लें, इसका जो आज जिक्र है इमरान खान के लॉयर फैसल चौधरी साहब ने जो आज अडयाला जेल में खान साहब से मिलने गए थे उसके बाद जो है ये उन्होंने बातें की, और उन्होंने कहा जी कि हमने कल तक की डेडलाइन दी है जो है ये जितने भी लोग हैं उनको, और अगर ये कल तक हमारी 3 बातें जो खान साहब ने कही हैं वो मान लेते हैं तो हम ये फिर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वरना खान साहब ने कहा है कि आपने हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि हम जो है इसके अलावा कि हम प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट जो है वो जो है हमारा हक है, और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये क्रूशल होता है कि वो कंट्रीज को यूनाइटेड रखें, लेकिन हमारे बड़े कंसर्न्स हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस आपने पीटीआई को डाले हुए हैं और आप उसको ना तो रैलीज करने देते हैं ना गैदरिंग्स करना चाहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक हक होता है लोगों का। तो उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ उनसे बात करेंगे जिनके पास रियल पावर है, यानी कि फियाज भाई की जबान में पिंडी बॉय, सिर्फ पिंडी बॉय से हम बात करेंगे, ये शहबाज शबू से हम नहीं बात करते करना चाहते, ये खान साहब ने पैगाम भेजा है। और उन्होंने कहा जी कि दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं वो प्रोग्रेस दिखाएंगी तो ही काम आगे चलेगा। बिल्कुल सही है भाईजान। फेडरल एपेक्स कमेटी जो है उसने जनाब ग्रीन लाइट दिया है फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव आर्मी ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट आउटफिट्स इन बलूचिस्तान जो कि कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व हैं किलिंग ऑफ सिविलियन इनोसेंट सिविलियंस एंड फॉरन नेशनल्स और पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर जो है रोड़े अटका रहे हैं। ये ऑपरेशन जो है ये किए जाएंगे मजीद ब्रिगेड BLA BLF BRAS। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज बड़ी हाई लेवल मीटिंग जो उसको चेयर किया उसके अंदर फेडरल कैबिनेट मेंबर्स, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब के सब इसमें थे। इसका टाइटल जो था मीटिंग का आज था री इन्विगरेटिंग पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म कैंपेन। इसके ऊपर बात करते हुए यूएस गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न है कि ये जो बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान में बढ़ गई है और इतने सिविलियन इनोसेंट जो है वो अपनी जान लूज कर रहे हैं तो हमारा बड़ा उस पर कंसर्न है। ISBR की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी, और इसके मुताबिक 12 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो पर्सनल हैं वो और 6 टेररिस्ट जो हैं उनको मारा गया है जब उन्होंने अटैक किया एक चेक पोस्ट पे इन माली खेल एरिया ऑफ केपीज बन्नू। और आपको पता ही है कि ये बहुत ज्यादा अटैक्स जो हैं खास तौर पे ये चेक पोस्ट जो पुलिस चेक पोस्ट है उसके ऊपर बढ़ गए हैं, लेकिन बहरहाल जी ISBR के मुताबिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सिक्योरिटी वालों ने इनके ऊपर अटैक किया और टेररिस्टों को मारा, और फिर से जी वही सेंटेंसेज के हम इलाके की सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बस जी कब पता नहीं अब ये छूट क्यों जाते हैं आपसे, ये हमें समझ में नहीं आ रही। एक हुआ था 9/11 वहां पे अमेरिका में, उसके बाद उन्होंने और कोई अटैक होने नहीं दिया। आपकी पता नहीं अब जो है वो पावे खा के सो रही है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे के, उनको होश ही नहीं है कि किधर कब किस वक्त जो है अटैक हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं ओ जी करार वाकई सजा देंगे, पता नहीं कब देंगे भाईजान, तो समझ नहीं आ रहे आपके इंटेलिजेंस सिस्टम्स क्या है। डिसबैंड करें सारों को और जरा कोई नए लड़के लड़कियों को लाएं ताकि आपका काम इंटेलिजेंस का सही से चले। द वायर की ये स्टोरी है जी, और ये अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि आपको पता ही है कि झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर जो है असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये जो है आज इसका आखिरी दिन था कैंपेन करने का। और वो कहते हैं जी कि ये जितने भी जो आ रहे हैं आंकड़े उसमें ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो बहुत ज्यादा वायलेशन कर रही है कोड ऑफ कंडक्ट की, और जाहिर है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ठनी हुई है, लेकिन बीजेपी जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही भद्दी झूठी कैंपेन चलाई हुई है अकॉर्डिंग टू द वायर। वो कहते हैं जी कि ये ब्लैटेंटली कम्युनल वीडियोज जो हैं ये डाल रहे हैं झारखंड में, जिसमें ये टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, और अनवेरीफाइड ये चीजें बोल रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि बांग्लादेश से जो है इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं मुसलमान जो है अनवेलकम गेस्ट हैं हियर। इसके अलावा भी बीजेपी की पहली भी जो वीडियोस थी उन्होंने भी ये शो किया था कि जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं यहां के हेमंत सोरेन, उनकी वाइफ कल्पना सोरेन और दूसरे इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो इंतहाई करप्ट पॉलिटिशियंस हैं जो कि मुसलमान आउटसाइडर्स के साथ मिले हुए हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं पावर में आने के लिए। कांग्रेस ने यह सारी जो झूठी वीडियोज डाली हैं बीजेपी ने, उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने कहा जी कि ये तमाम की तमाम वीडियोस मिसलीडिंग मलिशियस और डिविसिव हैं, और ये सारी की सारी वीडियोस बीजेपी के एक्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हैं और उसके ऊपर कोई उनका पुरसाने हाल है नहीं है, और कोई भी जो है बिल्कुल इम्प्यूनिटी से आगे चल रहे हैं, कोई इनको पुलिस या अदालत या कोई भी इनको पूछ नहीं रही है ना, और इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है। वो कहते हैं जी द वायर वाले कहते हैं जी कि बीजेपी का ये जो अगर कोई ये सेल्फ रेस्ट्रेंट शो करेंगे तो ये बड़ी ही विशफुल थिंकिंग होगी, क्योंकि वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि पिछले 10 साल में हमने देखा नहीं है, क्योंकि जो खुद अगर मुल्क का प्रधानमंत्री जो है वो ये प्रोजेक्ट करेगा कि इंडियन मुसलमान जो है वो खतरा है और ठीक नहीं है, उनको पूर लाइट में हाईलाइट करेगा तो फिर चीजें जो है कैसे चलेंगी, बाकी इससे जो है सीख लेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि उनके जो रिमार्क्स होते हैं मुसलमानों के खिलाफ वो भी बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा सुझाव दिया आज के जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ जरा थोड़ा सा स्पाइन शो करे और सिर्फ उनको नोटिस ना भेजे बीजेपी को कि जी एक्सप्लेन करो बल्कि कुछ उनके खिलाफ एक्शन भी ले। लेकिन जाहिर है जी और सारी गवर्नमेंट मशीनरी मोदी जी की जेब दे विच है ते एक्शन किसने लेना है जी, ऐसे है। एग्जिट पोल्स जो हैं जी वो भी आगे हैं महाराष्ट्र और झारखंड के लिए, और इनके मुताबिक बड़ा क्लियर एडवांटेज जो है वो महायुति अलायंस जो है उसको है महाराष्ट्र में, विद बीजेपी अजीत पवार एनसीपी एंड एकंत शिंदे शिवसेना, वो लगता है कि वो लोग रिटेन करेंगे पावर। इसी तरह जो है ये एग्जिट पोल्स निकालने वाली कंपनियां मेट्रिज और पीपल्स पोल्स और चनकिया, उन्होंने कहा जी कि इनका अपर हैंड है। चनकिया के मुताबिक बीजेपी की अलायंस 150-170 सीट्स जीत सकती है, 288 मेंबर महाराष्ट्र असेंबली एमवीए के जो है वो कहते हैं कि 110-130 सीट्स जीतेंगे। पीपल्स पल्स प्रिडिक्ट कर रही है कि 175-195 सीट्स जो हैं वो महायुति को मिलेंगी, चनकिया कह रहा है कि 150-160 मिलेंगी। रिजल्ट्स जो हैं यहां पे आएंगे इन दोनों बाई इलेक्शन के 23 नवंबर को। झारखंड के अंदर भी मेट्रिस जो है वो प्रिडिक्ट कर रही है कि बीजेपी लेड एनडीए जो है वो 81 सीट असेंबली के अंदर मेजोरिटी विन करेगी। हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर लेड इंडिया ब्लॉक जो है वो कहते हैं जी उनको फिर उनको हार हो सकती है। 2019 में झारखंड असेंबली में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जेएमएम लेड अलायंस जो थी उसने 47 सीट्स जीते थे और एनडीए ने 25 सीट्स जीते थे, तो इस दफा लग रहा है कि जैसे एनडीए जीत सकता है। तो पायन ये चीजें चल रही हैं। और जनाब आज बड़ी एक प्यारी तस्वीर जो है, एक आपको वीडियो नजर आ रही होगी उसके ऊपर, एक्स के ऊपर लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट, आपको पता ही है लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं एज जैक एंड रोज, ये बड़े ही बेचारे डूम्ड लवर्स थे जो कि जेम्स कैमरून की टाइटैनिक में नजर आए थे और उसके बाद दोनों के अंदर बड़ी दोस्ती हो गई थी गहरी। तो केट की नई फिल्म आ रही है ली, उसके प्रीमियर के ऊपर लॉस एंजलिस में जो है लियोनार्डो डिकैप्रियो भी थे, अपने एक्स पे उन्होंने लिखा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने जो फ्रेंड है केट को, उन्होंने कहा जी कि आई होप एवरीवन बेयर्स विटनेस टू फिल्म दैट कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीज लाइफ इमोशनल वेट ऑफ ट्रूथ नो मैटर हाउ पेनफुल इट इज। केट माय डियर फ्रेंड, योर वर्क इज इन फिल्म इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो जो है बड़ी उन्होंने अपनी सहेली की तारीफें की। रणवीर कपूर की भी जनाब आज एक बड़ी ही वायरल वीडियो जो है वो नजर आ रही है, बड़ा तूफान मचाए हुए है, जिसमें के लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये धूम 4 का एक एक्शन सीक्वेंस हो जो कि नजर आ रहा है और सारे सोशल मीडिया पे इसका शोर मचा हुआ है। ये देखा जा रहा है कि ये जो है भाग रहे हैं एनिमी से और जो है बहुत सारी जो बुलेट्स हैं इनका पीछा कर रहे हैं, फिर ये एक सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं और जो है वो उसमें फिर कैप्शन आ जाता है जो कहता है कि जो उसके ऊपर एक्स के ऊपर लिखा गया है कि ही इज बैक इन एक्शन इज इट बेटर और बेटर देन एवर। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये किस चीज का वीडियो है, ये किस चीज का क्लिप है। तो लोगों ने कहा कि हमें ये लग रहा है कि ये क्लिप जो है ये धूम 4 का हो सकता है, ये लीक्ड क्लिप है। ठीक है जी। अच्छा जी, पाइजन 100 करोड़ इंडियन रुपए, बड़ी गल। कभी कभी कोई फिल्में जो हैं हिंदुस्तान में 100 करोड़ पे मिलती थी और फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया कि बड़े बड़े सितारे 100 करोड़ मांगने लगे कि भई हमको 100 करोड़ दो इस फिल्म का, क्योंकि ये फिल्म तो हजार हजार करोड़ बना रही है। अब एक जो एक्टर है उसने नए जो है वो बेंच मॉक सेट किया है एंड ही इज नन अदर देन तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन। उसने पुष्पा 2 द रूल के लिए अपने मेकर्स को कहा है कि मेरे को 300 करोड़ दो इस फिल्म के लिए। और आपको तो पता ही है कि जवान और कंग युवा जो हैं उनके पूरी पूरी फिल्मों के बजट जो थे 300 करोड़ थे। तो यानी कि अब अल्लू अर्जुन जो हैं हिंदी फिल्म सिनेमा यानी कि इंडिया के आप बोल सकते हैं तेलुगु जो भी जितनी भी फिल्में की इंडस्ट्री है वहां पे उन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर हो गए हैं। ही सरपैसेस राज रजनीकांत जो के मांगते हैं अपनी हर फिल्म के लिए $250। जैसे कि जेलर विजय जो है उसने भी 250 करोड़ मांगे थे, नहीं डॉलर्स नहीं करोड़, 250 करोड़ रजनीकांत ने मांगे थे जेलर के लिए, विजय ने मांगे थे 250 करोड़ लियो के लिए, शाहरुख खान और हमारे सल्लू भाई जो हैं वो चार्ज करते हैं 150 to 200 करोड़ पर फिल्म, आमिर खान जो है उसको दिया गया था 230 करोड़ पर दंगल इन 2017। तो अब जो है अल्लू अर्जुन सबसे आगे 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 चल रहा है और हमको कोई $1 मिलियन नहीं दे रहा, बड़ी शर्म की बात है। दुनिया वालों शर्म करो है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के न्यूली अपॉइंटेड हेड कोच आकिब जावेद साहब जो हैं उनसे पूछा जा रहा था कि भाई बाबर आजम की क्या पोजीशन है और क्या उनको T20 टीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि जाहिर है कि बाबर आजम बेचारा आजकल बड़ा रफ पैच जो है तमाम फॉर्मेट्स में फेस कर रहा है। आकिब जावेद आज मीडिया से बात कर रहे थे लाहौर में, उन्होंने कहा जी कि सीनियर प्लेयर्स लाइक बाबर एंड रिजवान जो है उनकी अपनी वैल्यू होती है, उन्होंने और बाबर ने तो ओवर द ईयर्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो परफॉर्म किया। अब इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज की जरूरत इसलिए पड़ी कि कल रात फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि 3rd T20 जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाला है वो बाबर का लास्ट होएगा फॉर दिस फॉर्मेट, जिस वक्त तक आकिब जो है वो हेड कोच रहेंगे। और ये बिल्कुल एविडेंट है यानी कि ये बिल्कुल होएगा ऐसे, इसलिए कि ये जो बड़ा प्रीमियम बैट्समैन बना फिरता है इसका एवरेज जो है जस्ट 14 रन्स है इन 3 मैचेस। आकिब ने इन सब चीजों को रबिश किया कि इसका क्या मतलब है कि जब तक मैं हेड कोच रहूंगा मैं इसको नहीं खेलने दूंगा, बल्कि उन्होंने कहा जी कि बाबर ने ओवर द ईयर्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत और कॉन्ट्रीब्यूशन की है तो हम उसको रद्द नहीं कर सकते हैं। अच्छा पाइजन, जिथे दी खोती उथे आण खलोती, आपने हमने अक्सर ये बोला है और आपने सुना होगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्केड्यूल अभी तक सामने नहीं आ सका है, क्योंकि उसकी वजह है कि पीसीबी का स्टैंड है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे काम नहीं करेंगे, हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान आके खेले, जब बाकी सारी टीमें आ रही हैं तो हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा। हमने आपको बताया था थोड़े दिन पहले कि पीसीबी ने एक लेटर लिखा था आईसीसी को और कहा था कि इंडिया से रिटन एक्सप्लेनेशन मांगो कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा है। बीसीसीआई ने कहा कि हमने वर्बली आईसीसी को बता दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब स्यापा ये है कि ये स्केड्यूल इसलिए नहीं अनाउंस कर सकते हैं क्योंकि जितने कमर्शियल पार्टनर्स और ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने साफ साफ आईसीसी को बोल दिया है कि जिस वक्त तक इंडिया पाकिस्तान के मेचे नहीं होंगी हम पहे नहीं लगाएंगे, और अगर आपने पाकिस्तान पे जोर ना दिया कि वो हिंदुस्तान को अकोमोडेट करे तो फिर हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। अरे बाप रे, अब तो आईसीसी जो है अपने आप को बचाएगा, वो कहेगा खली वली पाकिस्तान, तुम इंडिया के साथ मैच दुबई में खेलो, है जी ऐसे है। तो अब ये पॉसिबल नहीं हो सका है और इसीलिए अभी तक स्केड्यूल जो है वो नहीं आ सका है। हालांकि आपको पता है कि कई महीने पहले ये जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनके स्केड्यूल्स आ जाते हैं, लेकिन अभी तक भी नहीं आया। इसके साथ साथ जो इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान में आने वाली थी खेलने के लिए अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024, तो उसके लिए भी वो अब नहीं आएगी। शैलेंद्रा यादव जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑफ ब्लाइंड इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने कहा जी कि हमको एनओसी जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से तो मिल गया था, लेकिन हम गवर्नमेंट का अप्रूवल चाह रहे थे टू ट्रेवल टू पाकिस्तान फॉर द इवेंट जो कि खेला जाएगा नवंबर 23 से डिसंबर 3 के बीच में, लेकिन हमको गवर्नमेंट ने मियां ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका परमिशन नहीं दिया है। तो एज अ रिजल्ट ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया नहीं रहेगा। ठीक है जी। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, 22 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन, किसका मैं बात कर रही हूं, टेनिस मैस्ट्रो राफेल नडाल, 38 ईयर्स उनकी सिर्फ एज है, लेकिन आज उन्होंने बड़ा ही हार्ट फेल्ड और बड़ा ही इमोशनल किस्म का जो है अपना एक मैसेज दिया। ये एक सोल्ड आउट एरिना था मलागा के अंदर स्पेन में, और वहां पे वो हार गए जो है, जहां पे के हार गया स्पेन 2-1 से टू नेदरलैंड्स इन डेविस कप, और उन्होंने कहा जी कि ये मेरा फाइनल प्रोफेशनल मैच है। 15 मिनट की उन्होंने अपनी स्पीच की, उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी आई ट्राई टू बी अ गुड पर्सन, और मैं मुझे लगता है कि आपने भी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट देखी होगी। वो कहते हैं जी कि मुझे जो कुछ भी मिला है टेनिस से मिला है, लेकिन अब मैं वर्ल्ड ऑफ टेनिस जिसमें मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए थे, टेनिस को भी और उन फ्रेंड्स को भी छोड़ के जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं बड़े पीस ऑफ माइंड में जा रहा हूं कि मैं जो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जा रहा हूं और एक स्पोर्टिंग भी लेगेसी छोड़ के जा रहा हूं, स्पोर्टिंग एंड पर्सनल लेगेसी जिसके के लिए मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, पब्लिक का उनके प्यार के लिए। 20 ईयर्स का जो मेरा करियर था वो बहुत ही अच्छे कुछ उसमें साल थे, कुछ बुरे भी साल थे, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ और आप मेरे साथ रहे हैं। मैं बड़ा फॉर्चुनेट फील करता हूं कि मुझे इतना ज्यादा दुनिया से प्यार मिला, खासतौर पर यहां स्पेन के अंदर। और ये स्पीच उन्होंने की उसके बाद जब ही लॉस्ट द मैच 6-4 टू बॉटिक वॉन्डी जैनशुप, और जिसने के इनका 29 मैच डेविस कप सिंगल्स विनिंग स्ट्रीक जो है वो तोड़ा। तो आज ये इमोशनल हो गए रूपड़ी,
बहुत अफसोस हुआ
दिली
अफसोस
है, मेरा बड़ा फेवरेट था ये।
चलिए अब ये थी हमारी रंगारंग और गर्मा गर्म खबरें।
यस,
आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी,
और ना भी आई हो तो क्या फर्क
नहीं, पसंद आई होगी जना, जब 770 पे कोई ऐसी चीज होती नहीं ये आवाज पे जो पसंद ना है।
अच्छा,
नहीं आती तो हम करवा देते हैं।
वही बात है, मैं कह नहीं वही थी, तुमने मुझे काट दिया, मैंने कहा नहीं पसंद आई होंगी तो क्या करोगे, हम आपसे करवा लेंगे फिर मिलना बार।
और अब जो है वो स्टूडियो जाने का जो है अब टाइम आ गया, लेकिन अगर अभी आप बाहर हैं ट्रैफिक जाम है और आपने एंड टाइम पे ग्रोसरी करनी है तो मोमिन हलाल जो ये शॉप है यहां आपको हलाल मीट भी मिल जाएगा और ग्रोसरी मिल जाएगी 10-10 क्रिसेंट जो है मिसिसागा, ये आपको टेरी फॉक्स से अंदर आएंगे यानी इग्लिंटन जाने टेरी फॉक्स से इग्लिंटन टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं, ये देखें जी
हमारी आमिर के लिए गोश्त कट रहे हैं, बेगम जा रही है।
हलाल मीट जो है ग्रोसरी यूनिट 12-10-10 ग्रीन क्रिसेंट मिसिसागा, और वहां आपको जो है वसीम भाई मिलेंगे 416-854-8962 उनका नंबर है। बहुत ही उनकी जो पहली एनिवर्सरी जो है एक साल मुकम्मल होने जा रहा है उस पर जो है वो बहुत ही जबरदस्त जो है वो उन्होंने सेज लगाई है, खासकर मीट पर भी और राइस पर भी। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, यूनिट 12 1010 ड्रीम क्रिसेंट मिसिसागा, और इनका नंबर है 9052861998। और जो इनकी 22 नवंबर यानी के बस दो दिन रहेगा जनाब, फ्राइडे आपने जो है वो ग्रोसरी करने के लिए मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी पहुंच जाए, आपको कॉम्प्लीमेंट्री चाय जलेबी और समोसा। मैं और शैलजी तो जा रहे हैं, बाकी आप जनाब अपना देख लें।
और आमिर की बेगम ऑलरेडी पहुंची हैं,
वो वसीम भाई के साथ जो है वो वैसे उनकी डीलिंग चलती रहती है, तो वो इशू नहीं है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं बेहतरीन ग्रोसरी करना और मीट लेना डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो एक बार जरूर मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी पर पहुंचिए। शैलजी आपका बहुत शुक्रिया, एज यूजुअल जिंदगी रही और आप जिंदा रहीं, तो इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जी तमाम सामीन और नाजरीन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से हारफा मुजफ्फर साहिबा की तरफ से, माजिद जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से, और मैं आपका होस्ट आमिर अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा, अरे आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है तुझको दिखाऊं मैं जरा, अरे एक अनकही थी दास्ता कहने लगे
हुआ सुबह।